सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है।
ओम शांति एंड गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। Introduction is written itself on the slide. So I'm BK Kiran from Bhopal. The topic which is to be covered is spirituality into action. We all say, हम सभी कहते हैं कि हम spiritual educational institution में पढ़ते हैं। हम ये कहते हैं कि हम गॉडली स्टूडेंट हैं। व्हाट डू वी ऑल से, जब लोग हमसे मिलते हैं और पूछते हैं कि आप ब्रह्मा कुमारीज में हैं, ब्रह्मा कुमारीज क्या करते हैं, तो हम क्या कहते हैं, हम स्पिरिचुअल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में हैं और पढ़ते हैं। सो व्हाट इज आवर फर्स्ट इंट्रोडक्शन, दैट वी आर स्पिरिचुअल पीपल। स्पिरिचुअल स्टूडेंट मतलब हम एक आध्यात्मिक व्यक्ति हैं। एक आध्यात्मिक व्यक्ति की पहचान क्या होती है? बाबा कहते हैं, अब यहां हम ये चीज कह सकते हैं बिकॉज आई कैन सी, आई थिंक सभी बीकेज हैं, कोई ऐसा है यहां पर जो मुरली नहीं सुनता है? ऐसा नहीं सुनता है। ऑल ऑफ Only one student, you are new. From where are you, brother? कहाँ से आए भाई आप? कानपुर से आए। तो आप कभी ब्रह्मा कुमारीज में इसके पहले गए नहीं थे? नया नया first time आपने ब्रह्मा कुमारीज का ये देखा है या कभी कभी जाते आते रहे? पीजी किए हैं तो गए हैं, लेकिन क्लासेस नहीं की उसके बाद रेगुलर। इच्छा नहीं हुई? इच्छा हुई लेकिन समय नहीं था। अच्छा, लेकिन जब इच्छा बहुत तीव्रतर हो जाएगी तो फिर समय भी आ जाएगा। इच्छा जो है हमें बनाती भी है और हमें बिगाड़ती भी है। वर्ल्डली डिजायर्स, दुनियावी इच्छाएं हमें अच्छा नहीं बनने देती, और अच्छा बनने की इच्छा हमें आध्यात्मिक जीवन जीना सिखा देती है। आध्यात्मिक जीवन का मतलब ये नहीं है कि मैं दुनिया की सारी सुख सुविधाएं छोड़ के, दुनिया के सारे व्यवहार कारोबार व्यापार संसार छोड़ के बैठ जाऊं। आध्यात्मिकता का अर्थ ये भी नहीं है कि मैं कोई भी ऐसी चीज जो आम लोग करते हैं वो ना करूं। आध्यात्मिकता का अर्थ ये भी नहीं है कि मैं सिर्फ पूजा पाठ करती रहूं। आध्यात्मिकता का अर्थ ये भी नहीं है कि मैं संन्यास लेकर कहीं चली जाऊं। आध्यात्मिकता का अर्थ है हर वो कार्य जो मैं अब तक कर रही थी, उसी हर कार्य को मैं एक अनोखे और नए ढंग से करूं। क्योंकि पीजी में आपने पढ़ा ना कि जब तक हम वही करते रहेंगे जो हम करते आए हैं, तो हम वही पाते रहेंगे जो हम पाते आए हैं। तो अगर जीवन में कुछ नया पाने की आशा इच्छा आकांक्षा है तो मुझे कुछ नया करना पड़ेगा, और नया करने के लिए मुझे कुछ नया सोचना पड़ेगा। तो सबसे पहले मेरी सोच में बदलाव चाहिए। इनर चेंज शुड बी ब्रॉट वेरी फर्स्ट। इनर चेंजेस नहीं है तो बिहेवियरल चेंजेस नहीं आते हैं। द टॉपिक विच वी आर टू स्टडी इज स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन, व्यवहार में आध्यात्मिकता है ना। कहने में तो हम कहते हैं, अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं, पर क्या मेरे व्यवहार से ये दिखाई देता है कि मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूं? अगर मेरे व्यवहार से ये दिखाई देना है तो उसकी पहली पहचान क्या है? स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहली पहचान क्या है, है ना। बाकी ये तो कोटेशन है जो किसी का दिया हुआ है, ये हम बाद में देखते हैं। स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसा होता है आपकी नजर में, स्पिरिचुअल व्यक्ति कैसा होता है? हाँ जी, दिख रहा है कोई इस पे है? स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? सौम्य, काम, प्रसन्न चित्त होगा, शांत होगा। सबसे पहली ही चीज है अंतर्मुखी, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी मतलब कुछ नई सोच, सेल्फ के ऊपर रिसर्च। दादी को हमने कभी देखा है क्या बहुत टिक 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 देखा है? जो भी बड़े होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, लेकिन वो बहुत अच्छा सोचते हैं। वो बहुत अधिक भी नहीं सोचते, वो बहुत अच्छा सोचते हैं। ईश्वर ने हमको कान दो दिए हैं, आंखें दो दी हैं और मुंह सिर्फ एक ही दिया है। क्यों? हम कम बोलें और अधिक सुने। सीखने की प्रक्रिया में भी यही चीज हमें मदद करती है। द वन हु स्पीक्स मोर कैन नॉट लर्न, सीख नहीं सकता है, क्योंकि जो बोल रहा है बोल रहा है बोल रहा है वो सुनेगा नहीं, और जो सुनेगा नहीं वो चिंतन मंथन क्या करेगा? सो इफ आई एम एंगेज्ड इन टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड टॉकिंग एंड आस्किंग, इसलिए बाबा क्या कहते हैं, नो क्वेश्चंस। जो ज्यादा क्यों 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 की क्यों लगाएगा, दुनिया की पढ़ाई और यहां की पढ़ाई टोटली कॉन्ट्रास्ट। दुनिया में भी ना, हम टीचिंग फील्ड से हैं, आई वॉज टीचिंग इन यूनिवर्सिटीज, आई वॉज टीचिंग इन सेंट्रल स्कूल्स, है ना। आई हैव गॉट द एक्सपीरियंस एंड आई कुड सी दैट वहां जो कुछ भी गुण माने जाते हैं वो यहां पर अवगुण हो जाते हैं। और अवगुण क्यों हो जाते हैं? क्योंकि टू मच टॉकिंग, टू मच थिंकिंग डज नॉट गिव मी क्वालिटेटिव वर्क। क्वालिटी नहीं आ सकती है मेरे काम में, फिर ना मेरी सोच में क्वालिटी आ सकती है, है ना। जैसे किसी माँ के अगर बहुत बच्चे पैदा हो जल्दी 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 जल्दी, तो क्या होता है, हर बच्चा कमजोर और माँ भी कमजोर। तो इसी तरह अगर मैं बहुत सोचती हूँ और बहुत ज्यादा बोलती हूँ, नेचुरली अगर मैं बहुत बोल रही हूँ तो मैं बहुत सोच रही हूँ, तो मेरा जो मन रूपी माँ है उसके इतने सारे बच्चे कम अंतराल में हो रहे हैं, तो हर बच्चा कमजोर और माँ भी कमजोर, तो मन भी कमजोर, माना मनोबल कम और बच्चे ढेर सारे, तो जो मैं सोचूंगी वो मैं कर नहीं पाऊंगी। हर कार्य को क्रिया रूप में परिवर्तन करने के लिए जो शक्ति या ऊर्जा या दृढ़ता चाहिए, वो शक्ति ऊर्जा और दृढ़ता मेरे पास रहेगी नहीं, बिकॉज ऑल हैज गॉन इन टू लीकेज। कई बार हम अपनी डिग्रियों के आधार पर हम ये समझ लेते हैं कि हम बहुत बोल सकते हैं, बिकॉज हम सभी एजुकेटेड लोग यहां बैठे हैं। दुनिया में डिग्रियों की कमी है क्या? बाबा इस धरा पर आए स्पिरिचुअलिटी सिखाने, तो बाबा ने किनको चुना, किनको चुना? पढ़ाई की जरूरत ही नहीं थी बाबा को। अब तो पढ़े लिखे लोगों को इंट्रोड्यूस इसलिए हम कर रहे हैं, अब इस क्वालिटी की जरूरत इसलिए है कि सेवा का विस्तार है। लेकिन बेसिकली अगर मुझे स्पिरिचुअल बनना है तो उसके लिए मुझे अंदर जाने की जरूरत है, बाहर की और किसी भी चीज की मुझे जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले तो मेरा ये जो लबादा ओढ़ा हुआ है, अंसो 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 अंसो, ये अलग निकाल के मैं रख दूं। देन अ वाइज पर्सन सेज विजडम, इस ऐसा करने से हम वाइज बनते हैं, है ना। अधिक बोलने से और अधिक सोचने से वाइज नहीं बनते। तो ऐसे ही एक वाइज व्यक्ति ने कहा है, विजडम इज नोइंग व्हाट टू डू नेक्स्ट, है ना। हर समय मुझे समझ में आना चाहिए कि अब मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कैसे उठना है, बैठना है, देखना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है, इसका अकल हो, This is called wisdom. Skill is knowing how to do it. Suppose you are given कि आपको अपने स्टेट में जाके 10 पीसीपी चलाने हैं, तो अब कैसे करूं? ये एग्जीक्यूटिव का काम है, लेकिन ये आइडिया आए ये एडमिनिस्ट्रेटर के माइंड में आएगा, व्हाट टू डू नेक्स्ट। ठीक है, यहां चला, अभी स्टेट में चलाने हैं, फिर वहां मुझे चलाना है तो मुझे क्या क्या करना है। दिस इज नोइंग ए स्किल एंड वर्च्यू इज डूइंग इट। जब हम उसको कर लेते हैं तो वो जो वैल्यूज हम उसमें यूज करते हैं, प्रैक्टिस में लानी पड़ेंगी आपको सारी वैल्यूज जो आपने सीखी हैं, एंड द वैल्यूज व्हेन दे ब्रॉट इनटू प्रैक्टिस दे आर कॉल्ड वर्च्यू। राइट, नाउ व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी? स्पिरिचुअलिटी क्या है? ना हिंदी इंग्लिश बायलिंगुअल कंफर्टेबल? ठीक है, हम हिंदी ज्यादा बोले, अच्छा ठीक है, स्लाइड्स तो इंग्लिश में है, बोलते हिंदी है, ठीक है चलेगा ना। आध्यात्मिकता क्या है? दैनिक जीवन में कार्य व्यवहार में आध्यात्मिकता को मुझे लाना है तो सबसे पहले मुझे समझना है कि आध्यात्मिकता चीज क्या है। कॉन्स्टेंट अवेयरनेस ऑफ यूजर एंड यूजेबल, दैट इज आई एंड माय। आध्यात्मिकता वो चीज है जिसमें मुझे सतत जागृति रहती है, इस बात की सतत पहचान रहती है कि यूजर माना उपयोग में लेने वाला कौन है और उपयोग में आने वाली क्या चीजें हैं। आई क्या है, माय क्या है, मैं और मेरा, इसका क्लियर डिफरेंस हमें पता हो। अवेयरनेस ऑफ बीइंग गेस्ट इन द बॉडी, यही सिखाते हैं ना बाबा भी, हम इस शरीर में मेहमान बनकर आए। अगर हर रोज अमृत वेले मैं जब उतरूं बाबा से मिलके तो ये चीज मैं नोट कर लूं अपने माइंड की डायरी में, अब मैं इस धरा पर अवतरित आत्मा हूं और सारे दिन कार्य व्यवहार में इसी तरह अगर रहूं तो फिर आप देखिए आपको कितना आनंद आता है। दिस इज व्हाट इज कॉल्ड एज अवेयरनेस ऑफ बीइंग गेस्ट इन द बॉडी। अवेयरनेस ऑफ बीइंग एक्टर एंड स्पेक्टेटर, मैं इस बात को सतत अपनी स्मृति में रखूं कि मैं इस धरा पर एक्टर भी हूं और स्पेक्टेटर भी हूं, रोल प्ले करने वाली भी हूं और दर्शक भी हूं। मेरी भूमिका है भी और भूमिका को एंजॉय भी मुझे ही करना है, तो साक्षी दृष्टा बन सकेंगे। अवेयरनेस ऑफ सेवन फंडामेंटल वर्च्यूज ऑफ द सोल, है ना, सात जो मुख्य तत्व हैं आत्मा के, प्रेम, शांति, आनंद, ज्ञान, गुण, पवित्रता, शक्तियां, है ना, इन सातों तत्वों की आत्मा बनी हुई है। ऐसे नहीं मुझे शांति चाहिए, ऐसे नहीं मुझे प्रेम चाहिए, मैं आत्मा बनी ही हूं शांति की और प्रेम की, लेकिन मुझे वो फील क्यों नहीं होता है? क्योंकि मैं अपने आत्म स्वरूप में टिक नहीं पाती, है ना। तो ये कांस्टेंट अवेयरनेस अगर रहे, अगर मेरी कॉन्शियसनेस में ये बात अच्छी तरह, अभी कांस्टेंट अवेयरनेस है ना, मेरा नाम शेफाली सिन्हा है, किसी का नाम जिसका नाम शेफाली सिन्हा होगा उसको ये कांस्टेंट अवेयरनेस है ना, इसी तरह मुझे ये कांस्टेंट अवेयरनेस होनी चाहिए कि मैं आत्मा इन सात मुख्य तत्वों की बनी हुई हूं। लोग हमें प्यार क्यों नहीं करते? क्योंकि हम खुद खुद से प्यार करना नहीं जानते। मेरे रिश्ते औरों के साथ क्यों अच्छे नहीं है? क्योंकि मेरा खुद से कोई रिश्ता ही नहीं है, है ना। तो सब कुछ मेरे ऊपर डिपेंड करता है। द आउटर वर्ल्ड विच आई एम गेटिंग इज ओनली द रिफ्लेक्शन ऑफ माई इनर वर्ल्ड। जो बाहरी दुनिया मुझे मिल रही है वो सिर्फ मेरे अंतर जगत का प्रतिबिंब है, इस बात को मैं अच्छी तरह समझ लूं। तो मेरा अंतर जगत जितना सुंदर होगा, मेरे आसपास का वातावरण उतना ही सुंदर होता जाएगा। अवेयरनेस ऑफ फ्रूशन ओरिएंटेड एक्शन, हमें ये पता हो कि कर्म के साथ कर्म फल जुड़ा हुआ है ही, तो कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान। जैसे कर्म करेगा वैसे फल देगा भगवान नहीं, भगवान नहीं देगा, ऑटोमेटिकली मिल जाएगा। अवेयरनेस ऑफ ट्रांजिटरी नेचर ऑफ मटेरियल वर्ल्ड। ये दुनिया परिवर्तनशील है, ट्रांजिटरी है, तो ये जो मटेरियल वर्ल्ड है, भौतिक दुनिया है, ये कितनी परिवर्तनशील है, ये कंटिन्यूस नेचर में रहना चाहिए। और तो और, जो शरीर दिन रात मेरे साथ रहता है, इस शरीर के सारे सेल्स, द ट्रिलियंस ऑफ सेल्स ऑफ दिस बॉडी, दे गेट चेंज आफ्टर एवरी 3 मंथ्स। हर 3 महीने के बाद मेरे शरीर का एक एक सेल चेंज हो जाता है। तो मेरा शरीर जिसको मैंने मैं मान रखा है, वो ही चेंजेबल है। सब कुछ चेंजेबल है, सब कुछ परिवर्तनशील है। तो ये दुनिया बाकी सिस्टम के सेल्स जो जहां के नहीं होते हो, लेकिन ट्रिलियंस ऑफ सेल्स तो होते हैं ना चेंज, फीचर्स तो होते हैं ना चेंज। 5 साल पहले, 10 साल पहले आपके जो फीचर्स थे वो आज नहीं है, और आज से 10 साल बाद नहीं रहेंगे। तो कितनी चेंजेबल है, ट्रिलियंस ऑफ सेल्स जब हम बोल रहे हैं, मतलब मैक्सिमम सेल्स चेंज हो जा रहे हैं, बॉडी चेंज हो रही है, उसके अंदर के सिस्टम्स चेंज हो रहे हैं, बाहरी दुनिया भी। आप कहते हैं ना, हमारा जमाना बहुत अच्छा था और अब जमाना अच्छा नहीं है, तो जमाना भी परिवर्तन हुआ है, मतलब सब कुछ चेंज होता रहता है। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ एज अ क्रिएटर ऑफ टाइम एंड सर्कमस्टेंसेस। हमारी बाहरी दुनिया, हमारे अंतर जगत का रिफ्लेक्शन है, कहने से अर्थ यह है कि मैं ही मास्टर हूं। बाबा भी कहते हैं ना, समय आपकी रचना है, तो मैं क्रिएटर हूं टाइम की। समय को अच्छा या बुरा बनाना ये मेरे हाथ में है, और परिस्थितियां भी स्वस्थिति से ही निर्मित होती हैं। अगर स्वस्थिति ठीक है तो कोई कारण नहीं कि हम परिस्थिति पर विजय ना पा सके, परिस्थिति कितनी ही विकट क्यों ना हो। अवेयरनेस ऑफ द फैक्ट दैट नेगेटिविटीज आर टेम्पररीली एक्वायर्ड एंड कैन बी रिमूव्ड, है ना। जितनी भी नेगेटिविटी है, ये टेम्पररीली एक्वायर्ड की हुई है ना। अभी यहां आने के बाद, मैं आत्मा जब उतरी थी तो अपने शुद्ध स्वरूप में थी, और उस वक्त जब आत्मा अपने शुद्ध स्वरूप में होती है तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं होती। अपने शुद्ध स्वरूप में हम सब बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत, बहुत शुद्ध हैं। ओरिजिनल फॉर्म हमारा ऐसा है। जो नेगेटिविटीज हमने एक्वायर की, वो यहां आके एक्वायर की, तो व्हाट एवर इज एक्वायर्ड कैन बी रिमूव्ड। इस साड़ी का ओरिजिनल कलर क्या है? व्हाइट। अगर मैली हो जाती है, 2 दिन 3 दिन 4 दिन यूज किया, सफर में है, चेंज नहीं कर पाए, काली हो जाती है, तो क्या ये साफ नहीं होगी? ठीक है, नॉर्मल वॉश से साफ नहीं होगी, ड्राईक्लीन से होगी, ब्लीच से होगी, पर जो एक्वायर किया जाता है उसको छोड़ा भी जा सकता है। अवेयरनेस ऑफ द ट्रू कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन म्यूचुअल रिलेशनशिप्स। जो रिलेशनशिप्स हैं उनमें क्यों कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, इसका रीजन मुझे समझ में आया। ये तब आएगा जब मैं अपनी भाव और भावनाओं को ठीक से समझ सकती हूँ। अगर मैं अपनी भावनाओं को ठीक समझ सकती हूँ तो मेरा अपने साथ संबंध स्थापित हो सकता है। अगर मेरा अपने साथ संबंध ठीक है तो कोई कारण नहीं कि मेरा औरों के साथ संबंध ठीक ना हो। जब हम जाते हैं, कई बार एडमिनिस्ट्रेटर्स का प्रोग्राम होता है, ट्रेनिंग्स होती हैं, उनसे पूछते हैं कि आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में किस किस के नाम है, तो बताते हैं इनके रहते हैं, इनके रहते हैं। तो एक दो बार हमने पूछा कि आपकी अपॉइंटमेंट डायरी में आपका अपना नाम है, आप अपने लिए भी कुछ वक्त रखते हैं? जी बहन जी, रखते हैं। क्या करते हैं उसमें? क्लब जाते हैं, गोल्फ खेलते हैं, है ना, और चेस खेलते हैं, कैरम खेलते हैं, जो भी, बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स। खुद से बैठ के मैं खुद बात करूं, इसका मेरे पास वक्त नहीं है। दुनिया में हम किन लोगों के पास उठना बैठना पसंद नहीं करते हैं? किन के पास नहीं उठते बैठते हैं? जो हमें पसंद नहीं आते, या जो कोई इनसेंसिबल टॉक करता है, या किसी भी कारण से हम जिसको कम पसंद करते हैं, हम सोचते हैं वो आया तो भैया निकल लो यहां से, है ना। तो हम अपने पास नहीं बैठते, या फिर हम किसी से डरते हैं, बाबा कुछ कह देगा, है ना, या कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा, झगड़ा हो जाएगा, ऐसे लोगों से हम दूर रहते हैं, उनके पास हम बैठना पसंद नहीं करते। तो हम इस दुनिया में हर किसी से मिलते हैं, उनके साथ बैठते हैं, बात करते हैं, लेकिन हम खुद अपने साथ मिलते नहीं, बैठते नहीं, बात नहीं करते। तो गोया हम खुद खुद को या तो पसंद नहीं करते या हम खुद खुद से डरते हैं, अपने इनर सेल्फ को देखना नहीं चाहते, क्योंकि वो जो मेरा आंतरिक चेहरा है वो मेरी कल्पना के प्रमाण नहीं है। क्योंकि हम अपने अंतर को तो खुद बहुत बेहतर जानते हैं ना, तोरा मन दर्पण कहलाए, भले बुरे सारे कर्मों को देखे और दिखाए, हर एक को ये पता है कि मैं क्या हूं। तो उस मैं से सामना करने में घबराहट होती है, क्योंकि बहुत सारी निगेटिविटीज एक्वायर की हुई है, बहुत सारे नकाब ओढ़ के हम इस दुनिया में व्यवहार में आते हैं। स्पिरिचुअलिटी मतलब उन नकाबों से अपने आप को मुक्त करना, एंड अवेयरनेस ऑफ द सोर्स ऑफ वर्च्यूज गॉड, आत्मा की सही पहचान, सेल्फ रियलाइजेशन मतलब इतनी सारी अवेयरनेस। हम लोगों को क्या कहते हैं स्पिरिचुअलिटी, ब्रह्मा कुमारीज में हम सेल्फ रियलाइजेशन कराते हैं। सेल्फ रियलाइजेशन का आधार क्या है, ये सारी अवेयरनेस, इतनी जागृतियां अगर मेरे अंदर आ जाए तो सेल्फ अवेयरनेस क्रिएट हो जाती है, और फिर परमात्मा के प्रति हमारा संबंध आसानी से स्थापित हो जाता है। देखिए परमात्मा को तो याद हमने किया ना, द्वापर और कलयुग में भी किया ना, लेकिन फिर भी डाउनफॉल कितना फास्ट रहा, और सतयुग त्रेता में तो परमात्मा याद ही नहीं था, डाउनफॉल तब भी हुआ लेकिन बहुत स्लो हुआ। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या हुआ, आत्मा की अवेयरनेस या परमात्मा की अवेयरनेस, दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन आत्मा की अवेयरनेस अगर ठीक नहीं है तो परमात्मा याद भी है तो वो यथार्थ याद नहीं है। इसलिए बाबा कहता गीता में भी क्या कहा, हे अर्जुन देह सहित देह के संबंधों को भूलकर मामेकम शरणम व्रज, देह सहित अपने देह के सारे संबंधियों को भी भूल जाओ तो क्या बन जाएंगे, आत्मा बन जाएंगे ना। तो ये पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि मैं खुद को अच्छी तरह से आत्मा समझ लूं, इस पर ज्यादा मेहनत करने की दरकार है। देखने में क्या आता है, बच्चे बाबा 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 तो बहुत कहते, मुख से भी कहते, मेरा बाबा भी कहते, लेकिन इस एक लेसन पर जितना मेहनत करनी चाहिए उतनी नहीं होती है, ये प्रैक्टिस नहीं होती है, है ना, पता सब है लेकिन ये प्रैक्टिस नहीं करते। ये ठीक ऐसा ही जैसे किसी डॉक्टर के पास गए, है ना, हम बहुत बीमार थे, डॉक्टर ने दवाइयां दी, हम दवाइयां ले आए और सामने प्लेट में रख ली, अब उसको देख रहे हैं लेकिन खा नहीं रहे हैं, तो ठीक होंगे कैसे। और फिर गए थोड़े दिन बाद, फिर डॉक्टर को जाके ब्लेम कर दिया, हम तो इतने दिन से आपके पास आए थे, हमने, डॉक्टर ने कहा दवाइयां ली आपने, हाँ दवाइयां भी लेके गए हम, लेकिन फायदा कुछ नहीं हुआ, ये तो बताया ही नहीं कि हम दवाई खाते ही नहीं है। ठीक इसी तरह हमको ये पता है, आत्मा समझना है, लेकिन क्या मैं सच में इस पर कुछ काम कर रही हूं। अगर मैं ये काम कर लूं ना तो जो बाबा चाहता है वो बनने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। स्पिरिचुअलिटी इन एक्शन मीन्स टू नो हाउ टू लिव, आर्ट ऑफ लिविंग है ये, कैसे जीना चाहिए, सुंदर जीवन जीने की कला है। थ्रू दिस नोइंग देयर इज हैप्पीनेस, है ना, ये जान लेने से अंदर में खुशी का एक स्रोत भी निकल आता है, हमें बाहर की खुशियों की दरकार नहीं रहती। स्पिरिचुअलिटी इज नॉट अ सिस्टम ऑफ वर्शिप और रिचुअल, ये भी बताया पहले ही कि कोई पूजा पाठ या कर्म कांड या आध्यात्मिकता नहीं है, लेकिन ये एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, एक सकारात्मक दृष्टिकोण है टुवर्ड्स द सेल्फ एंड अदर्स, विच मेक्स लाइफ अ जॉय रादर देन अ स्ट्रगल, है ना। मेरा परसेप्शन कैसे है चीजों की तरफ, लोगों की तरफ, बातों की तरफ, है ना, ये स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान है। तो अपने एटीट्यूड को परिशुद्ध करना और अपने वृत्ति को ठीक करने के लिए भाव और भावना को ठीक करने की जरूरत है। अगर मेरी भाव भावना ठीक है तो मेरा अपने से रिलेशनशिप ठीक रहेगा, अगर मैं अपनी भाव और भावनाओं को ही नहीं जानती। मुश्किल ये कि हम अपनी भावनाओं को ठीक तरह पहचानते ही नहीं ना, हमारी हमसे कभी बात ही नहीं होती है, तो मुझे पता ही नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, समय की धारा में बहते जा रहे। तो हमारी लाइफ जब बिना स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल के हम लाइफ जीते हैं, उस समय पॉजिटिविटी नहीं है और नेगेटिविटी भी थी, तो क्या प्रॉब्लम थी? द ग्रेटेस्ट प्रॉब्लम विच वी फेस्ड वॉज वॉट? अ लॉट ऑफ स्ट्रगल इन लाइफ। बहुत सारी स्ट्रगल हमको फेस करनी पड़ रही थी। जैसे जैसे हम पॉजिटिव होते जाते हैं, स्ट्रगल अपने आप ही सबसाइड होता जाता है। द मोर पॉजिटिव वी आर टूवर्ड्स ourselves, then that attitude is expressed towards others. सबसे बड़ा negative attitude हम पहले अपने प्रति ही बना चुके थे। क्या वो सबसे बड़ा negative क्या था? मैंने ये मान लिया था कि मैं शरीर हूँ, तो मेरे शरीर की सारी powers है ना, मेरे शरीर की क्षमताएं सब limited है ना। Time, इतना ही time मैं जीऊंगी, इतना ही मैं करूंगी, इतनी ही मेरी शक्ति है, इतना मुझे आराम चाहिए ही चाहिए, ये सारा शरीर के साथ था ना। तो अपने आप को लिमिटेड कॉन्शियस में हम ले आए थे, एंड दिस वॉज द फर्स्ट नेगेटिव थॉट विच वी क्रिएटेड एज वी केम इन ऑन टू दिस अर्थ, एंड फ्रॉम देयर द स्ट्रगल स्टार्टेड। द्वापर से स्ट्रगल स्टार्ट क्यों हुआ? देह अभिमान में आने से ही सब प्रॉब्लम्स क्यों क्रिएट हुई? क्योंकि ये पहला नेगेटिव थॉट हम अपने बारे में ले आए। हमने ये मान लिया कि हम ऐसे हैं, कंप्यूटर को ये प्रोग्रामिंग दे दिया, तो जब ऐसा प्रोग्रामिंग दे दिया तो रिजल्ट भी ऐसी मिली। ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस लेसन को पढ़ने के बाद हम क्या क्या सीखेंगे? टू अंडरस्टैंड क्लियरली अबाउट स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता के बारे में ना बहुत बहुत कंफ्यूजन है स्टिल इन ब्रह्मा कुमारीज, सेंटर के अंदर रहने वालों में भी, रेगुलर मुरली सुनने वालों में भी है ना। आध्यात्मिक होने का मतलब ये नहीं है कि मुझे बहुत सारा बोलने को मिले। आध्यात्मिक होने का मतलब ये भी नहीं है कि मैं एकदम ऐसे हो जाऊं। शांत रहने का मतलब ये नहीं है कि मैं अपने कर्तव्यों से दूर हो जाऊं। शांत रहने का मतलब ये भी नहीं है, या हां जी कहने का ये भी मतलब नहीं है कि कोई भी बात जो सामने आ रही है उसको मैं बिना सोचे समझे स्वीकार कर लूं। हां जी कहने का मतलब ये भी नहीं है कि हर चीज को मैं हां हां करती जाऊं, टाइम आए तो कुछ भी काम ना करूं और वो सामने वाला मेरे भरोसे में बैठा रहे। इज दिस अ स्पिरिचुअल पर्सन? स्पिरिचुअल पर्सन मीन्स वाइज। मनुष्य से देवता बनना माना क्या, मुकुट लगा लेना और ये मनुष्य से देवता बनना, ये नहीं है ना। मनुष्य से देवता बनना मतलब वाइज बनना, इंटेलेक्चुअली क्लियर, माइंड की क्लैरिटी, इंटेलेक्ट की क्लैरिटी, मन की सफाई है ना। ये सारी चीजें जब तक अंदर से इम्बाइब नहीं होती तब तक वैल्यूज और वर्च्यूज आ नहीं सकते हैं। इसीलिए स्पिरिचुअलिटी की एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट फॉर गिविंग वैल्यू एजुकेशन। देन टू नो अबाउट, यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन अबाउट कॉन्शियसनेस। आप कहीं भी जाके ये समझा सकेंगे कॉन्शियसनेस क्या है, आप अप्रिशिएट कर सकेंगे मीनिंग क्या है इनर वेलबींग। अंतर को भी ठीक रखने की जरूरत है, उसको ठीक रखने की क्या तरीके और वो कैसे अच्छा रहता है, इसका अर्थ भी समझ में आएगा और उसको रख भी सकेंगे। एक्सप्लोर द हीलर एंड द प्रोसेस ऑफ हीलिंग। इनफैक्ट जब भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं तो हम क्या सोचते हैं, दवा दी डॉक्टर ने उससे हम अच्छे हुए, और जो डॉक्टर्स हैं बड़े बड़े वो क्या कहते हैं, हीलिंग प्रोसेस जो मेडिसिन होती है वो सिर्फ हीलिंग प्रोसेस को इनिशिएट करती है ना। बाकी जो भी मतलब टॉक्सिन्स को हटाने के लिए जो भी सिस्टम्स हैं वो हमारे अंदर बने ही हुए हैं, उनको एक्टिवेट करने का काम सिर्फ करती है मेडिसिन्स। वो इसलिए कि हम जो आत्मा के सात तत्व हैं, सात्विक गुणों में जब आत्मा रहती है तो वो सारे सिस्टम खुद ब खुद कार्य करते हैं। लेकिन इन सात तत्वों में से जिस जिस तत्व की कमी पड़ती जाती है उस प्रकार के रोग होते जाते हैं। जैसे अगर शक्ति की कमी पड़ी तो हड्डियों के रोग होते हैं, अगर खुशी की कमी पड़ी तो हृदय के रोग होते हैं। इस तरह की बहुत सारे सिस्टम्स में खराबी आती है। जो भी सिस्टम्स हमारे सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, ये सारे कार्य करते हैं इन्हीं सात तत्वों के आधार पर। डिफ्रेंशिएट बिटवीन पर्सनल इफेक्टिवनेस एंड पर्सनल डेवलपमेंट, ये तो हम सब खुद ही महसूस कर रहे हैं कि हमारे कार्य प्रणाली में फर्क आया है स्पिरिचुअल स्टूडेंट्स बनने के बाद, दक्षता आई है, योग से कर्मों में कुशलता आती है, इसको कोई डिनाई नहीं कर सकता। और अगर नहीं आ रही है कुशलता तो जरूर स्पिरिचुअलिटी को मैंने ठीक से सीखा नहीं है। रियलिटी कॉन्शियसनेस, ये क्या है, सच्चाई क्या है? अकॉर्डिंग टू राजयोग सिस्टम जो हम ब्रह्मा कुमारी में पढ़ाते हैं, यहां तो हम सब बीकेस बैठे हैं, जब कहीं हम बाहर जाएंगे है ना और वहां नॉन बीकेस होंगे तो उनको राजयोग सिस्टम क्या है ये साइंटिफिक लैंग्वेज में आपको बताना होगा। कैसे बताएंगे? राजयोग सिस्टम ये कहता है, वहां हम ये नहीं कहें डायरेक्ट कि परमात्मा क्या कहता है, ना ये कहे कि यही ठीक है ना, परमात्मा क्या कहता है ये बताने के लिए उनको पहले इस लेवल तक लाना पड़ेगा और फिर उसके बाद भले ये भी बताएं, लेकिन स्टार्टिंग में हम ये कहें कि ब्रह्मा कुमारीज में जो राजयोग सिस्टम है वो ये कहता है कि द सेल्फ इज एन इंडिविजिबल इरिड्यूसिबल परमानेंट पर्सन। हम जो है डिवाइड नहीं हो सकते, कॉन्शियसनेस को डिवाइड नहीं किया जा सकता है ना, वो क्या कहते हैं अणु और परमाणु और फिर बांट सकते हैं उनको, डिवाइड कर सकते हैं, इस तरह से कुछ नहीं हो सकता है। इरिड्यूसिबल, वो रिड्यूस भी नहीं किया जा सकता है और वो परमानेंट है, बिकॉज इट इज एन एनर्जी एंड एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, वो रहेगी, थी है और रहेगी, इट कैन ओनली चेंज इट्स फॉर्म। इट इज अ पॉइंट ऑफ कॉन्शियसनेस विच कैन नॉट बी स्प्लिट, पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट है, इसको आप दो भागों में विभाजित नहीं कर सकते हैं और ये एक संपूर्ण थी है और रहेगी। इसको कैरेक्टराइज कैसे करेंगे, कैसे पहचानेंगे कि भाई आत्माएं सब या कॉन्शियसनेस सब एक सी हैं, छोटे 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 पॉइंट्स हैं, लेकिन इनकी पहचान कैसे होती है, बाय वेरियस क्वालिटीज, अलग अलग क्वालिटीज क्या है। कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कोई बहुत अच्छा राइटर है, कोई बहुत अच्छा सिंगर है, ये सारी स्किल्स थॉट्स है ना, ये सब हम बताते हैं ना लोगों को आत्मा में होती हैं। तो जो क्वालिटीज हैं, क्वालिटीज के आधार पर हम कहते हैं ना पुण्य आत्मा, धर्म आत्मा, महान आत्मा, जो भी कहते हैं पाप आत्मा, परम आत्मा, जो भी आत्माएं हैं, जो भी कॉन्शियसनेस है उसकी क्वालिटीज के आधार पर कैरेक्टराइजेशन होती है। मेंटल स्टेट्स और पर्सनैलिटी ट्रेट्स डिवाइन और डेविलिश दोनों हो सकती है, पाप आत्मा और पुण्य आत्मा, एंड इट हैज वेरियस एक्सपीरियंसेस, उसके पास बहुत सारे एक्सपीरियंसेस हैं और इसके प्रूफ भी हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन जैसी बहुत सारी मेथड्स ये प्रूव करती हैं कि वो जो कॉन्शियसनेस है वो वेरियस एक्सपीरियंसेस को कैरी करती है ना। अगर कैरी ना करे तो बस हमने अभी का ये पल जिया और समाप्त हो गया है ना। और अगर ऐसा नहीं है, कोई अगर, कई लोग ये कहते हैं ना पुनर्जन्म को भी नहीं मानते हैं कई लोग, तो फिर अच्छे कर्म करने पर जोर क्यों है, उनसे ये पूछना चाहिए। वो जो कहते हैं कि पुनर्जन्म नहीं है, ठीक है जो हमने किया वो यहीं मिलेगा और यहीं सब खत्म हो जाएगा, तो फिर हम यहाँ कुछ भी करते रहें, यहीं पर ये हमने पाया खोया और वो खत्म, फिर लास्ट मोमेंट्स पर पुण्य करने की क्या जरूरत है, वो तो खत्म ही हो रहा है, उसने कुछ भी पाप किए खत्म ही हो रहा है, उसके जाने के बाद भी उसके नाम पर दान करने की क्या जरूरत है, फिर उसको दफनाते समय मंत्रोच्चार करने की क्या जरूरत है ना। तो ये कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं विच वी कैन रेज दोज हु हैव गॉट मिसकंसेप्शन अबाउट स्पिरिचुअलिटी, जिनमें आध्यात्मिकता के बारे में बहुत सी गलत धारणाएं बनी हुई हैं। कॉन्शियसनेस के बारे में और क्या कहता है राजयोग सिस्टम, द सेल्फ इज, ये तो हो गया सॉरी, इट इज विल एंड वॉल्यूशन एंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स एक्शन एंड इज फ्री एंड हैज फ्रीडम ऑफ विल बट डज नॉट ऑलवेज हैव होल्ड ओवर द रिजल्ट ऑफ इट्स एक्शंस। ज्योतिष भी होता है, लोग कहते हैं ना भाग्य और कर्म, वास्तव में जो भाग्य या तकदीर होती है वो क्या होती है, हमारे पूर्व जन्मों के पुण्य कर्मों का किया हुआ संचित फल भाग्य है और पूर्व जन्मों के पाप कर्मों का किया हुआ संचित फल क्या है, दुर्भाग्य है। तो ये पाप और पुण्य की परिभाषा ज्योतिष भी करता है, लेकिन साथ में वो भी फ्री विल की बात करता है। तो हम हर व्यक्ति अपना भाग्य खुद बना सकते हैं, है ना, उसकी आधारशिला हम नए सिरे से रख सकते हैं। ये विश्वास अंदर में हो, और राजयोग सिस्टम इसी बात को सपोर्ट करता है। हम कर्म करें अच्छे तो फल ऑटोमेटिक मिलेगा, लेकिन कर्म के फल पर मेरा कोई होल्ड नहीं है। मैं कहूं कि नहीं, मुझे सबके लिए बहुत भला करना है, मुझे फल नहीं चाहिए, लेकिन वो तो मिलेगा। इसी तरह अगर बुरा भी करूं तो भी मिलेगा। योगिक सिस्टम और गीता जो बताती है वो भी क्या कहती है, अ पॉइंट इन द ब्रेन विच इज इन द लाइन विद द मिड पॉइंट बिटवीन द टू आईब्रोज, है ना, दोनों भ्रुकुटियों के मध्य स्थित होती है ये कॉन्शियसनेस, और यही सही स्थान है। अगर हम कार की तरह कहते हैं बॉडी को, तो कार के ड्राइवर को हमेशा हेड पर ही होना चाहिए, और वहां ही होना चाहिए जहां खिड़कियों से वो सारा जहां देख सके। और इस कार के लिए खिड़कियां क्या है, नैन, है ना, तो वो वहीं रहेगी और ब्रेन उसके लिए स्टीयरिंग का काम कर रही है, जिससे वो पूरी कार को कंट्रोल कर रहा है। हाँ जी, जो टूल्स राजयोग ने दिए हैं हमको स्पिरिचुअलिटी के लिए वो क्या है, ये सजेस्ट करता है कि हम अपने माइंड में एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म करते हैं और अपने नेचर को खुद जानने की कोशिश करते हैं। खुद को जानना सबसे डिफिकल्ट काम है, खुदा को जानना उतना डिफिकल्ट नहीं है। नोइंग अबाउट द सेल्फ इज वेरी डिफिकल्ट एंड इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ रिसर्च टू बी डन। खुद पर आपको ज्यादा काम करने की जरूरत है। हम में से हर व्यक्ति को जो भी स्पिरिचुअल बनना चाहता है उसको खुद पर वर्क अधिक करना होता है। सेल्फ इज मेटाफिजिकल एंटिटी, मेटाफिजिकल है ये तो हम जानते ही हैं, स्टेइंग इन द रीजन ऑफ द थैलेमस हाइपोथैलेमस एंड पिट्यूटरी ग्लैंड्स। एक ओपन रीजन है दोनों हेमिस्फीयर्स के बीच में, और ये रीजन जो फॉर्म होता है पिट्यूटरी ग्लैंड्स और थैलेमस और हाइपोथैलेमस के पास, वहां पर ये सिचुएटेड है, पर किसी भी नर्व से किसी बात से जुड़ी नहीं है। ये हमको आम लोगों को बताना पड़ता है कि वो कोई फिजिकल चीज नहीं है जिससे वो कहीं से कनेक्टेड है। इट्स टोटली फ्री, टोटली फ्री। सो व्हाट इज रियल फ्रीडम देन? आत्मा इस शरीर के बंधन में रहते हुए भी, एक धागे से भी, एक पतली शिरा से भी जुड़ी हुई नहीं है, टोटली फ्री है। तो अगर मैं सोल कॉन्शियस हो जाती हूं तो मैं लाखों बंधनों में रहते हुए भी स्वतंत्र हूं, और उस स्वतंत्रता को मैं फील कर सकती हूं, एंजॉय कर सकती हूं। दिस इज द वे टू बिकम फ्री। बच्चे कई बार कहते हैं बंधन में है, माताएं भी ऐसे बहुत कहती है बंधन में। रीजन क्या है, वो बंधन जल्दी क्यों नहीं कटते हैं? क्योंकि देह के संबंधों को हम तोड़ना चाहते हैं, लेकिन आत्मा देह से अपना संबंध अगर तोड़ ले तो देह के संबंध तो टूटे हुए ही हैं, मरे ही पड़े हैं। अर्जुन ये सब मरे ही पड़े हैं। इस बात को मैं गहराई से समझ लूं कि सोल कॉन्शियसनेस जो है वही टोटल फ्रीडम है। तो अगर मैं सोल कॉन्शियसनेस में आ जाती हूं तो मुझे कोई बंधनों में रख नहीं सकता है। पीनियल एंड लिम्बिक सिस्टम इज ऑल्सो सपोर्टेड बाय द क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स। ये जो सारे सिस्टम्स हैं, ये क्लिनिकल एक्सपेरिमेंट्स जो है वो बताते हैं कि ये जो राजयोग की ये कंसेप्शन है दैट इज राइट, उसको सपोर्ट करते हैं। अब कंसेप्ट राजयोग की यही क्यों, कॉन्शियसनेस की यही कंसेप्ट राजयोग ने क्यों मानी है? ये कंसेप्ट जो है, कंसेप्ट ऑफ द सेल्फ इज नॉट ओनली इन अकॉर्डेंस विद द राजयोग फिलोसफी बट ऑल्सो इन लाइन विद मेनी अदर फिलोसफीज। एंड व्हाट आर दोज फिलोसफीज? वो फिलोसफीज क्या है? सांख्य और न्याय स्कूल ऑफ इंडियन फिलोसफी, है ना, बहुत पतंजलि योग। भारत में कितने योग मशहूर हैं, जिन लोगों ने इसके बारे में बहुत स्टडी किया होगा वो ये जानते होंगे, हमारी इस बारे में ज्यादा स्टडी नहीं है। लेकिन ये किसी भी कंसेप्शन को विरोध करे ऐसी कंसेप्शन नहीं है। मांडुक्य उपनिषद, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस जो हम आजकल देख रहे हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशंस भी इस बात को सपोर्ट करते हैं ना, पुनर्जन्म होता है। आज तक भी क्या पास्ट लाइफ रिग्रेशंस के कुछ शायद सीरियल भी शुरू हुए थे, तो लोग कई बार कहते हैं ना कि 84 लाख योनियां, उसमें क्या कभी किसी ने ये कहा कि पिछले जन्म में हम फला फला जानवर या पशु या पक्षी थे? नहीं कहा ना, मेल या फीमेल, इससे ज्यादा चेंजेस सोल में हो नहीं सकते। फिर लास्ट कहते हैं, दिस कंसेप्ट ऑफ सेल्फ कैन हेल्प बिल्ड अ बेटर सोसाइटी मॉरली इफ फॉलोड इन प्रैक्टिकल लाइफ। ये बहुत, वी विल बी एबल टू क्रिएट अ प्लेजेंट प्लेस टू लिव इन। ये दुनिया जैसी बन गई है, हम कहते तो रहते हैं कि बहुत खराब है, जमाना खराब है, परिवेश खराब है। अच्छा, मुझे अच्छा समय चाहिए, मुझे अच्छा जमाना चाहिए, मुझे अच्छा परिवेश चाहिए, और बनाएगा कौन? मुझे ही बनाना है। तो स्पिरिचुअल पर्सन मतलब टू बी रिस्पॉन्सिबल, आई टेक माई ओन चार्ज। मैं अपनी हर चीज के लिए खुद को रिस्पॉन्सिबल फील करूं, ब्लेम गेम नहीं खेलूं, है ना। जब अच्छा कुछ हुआ तो आई हैव डन इट, और जब खराब हुआ, मुझे नहीं पता भाई जी, मुझे नहीं पता दीदी, पता नहीं किसने किया, उसने शायद किया होगा। अच्छा, कई बार ऐसे पूरा ब्लेम नहीं करते, पर थोड़ा थोड़ा मैनिपुलेट कर देते हैं, रिपोर्टिंग करते करते थोड़ा मैनिपुलेशन किया, तो मैंने ही था, लेकिन ये ऐसे नहीं किया था, पता नहीं कैसे हो गया। तो ये थोड़ी थोड़ी जो मैनिपुलेशन है, ये भी ब्लेम गेम है ना, है ना। इन सब से बचना चाहिए, क्योंकि ये स्पिरिचुअल व्यक्ति की पहचान नहीं है। अच्छा, अब अलग अलग लोग अलग अलग सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस में पैदा हुए हैं, पलते हैं, बढ़ते हैं, है ना, तो वो भी हम इस कंसेप्शन से आंसर कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है, आत्मा जन्म पुनर्जन्म नहीं लेती और अपने कर्मों के अनुसार फल नहीं पाती, तो वाई सो मच ऑफ डिफरेंस? समवन हैविंग गोल्डन स्पून इन माउथ बाय बर्थ, पैदा होते ही उसके पास सब कुछ है। एक वो बच्चा भी है जो पैदा होते ही सब फैसिलिटीज एंजॉय कर रहा है, दूसरा वो भी बच्चा है जो बीमार है, रेलवे स्टेशन के पास कहीं पड़ा है, उसको देखने वाला भी कोई नहीं। तो कैसे आप आंसर करेंगे? और कोई दूसरी कंसेप्शन ऐसी है नहीं जो इन प्रश्नों के ठीक उत्तर दे सके। इट कैन वेल एक्सप्लेन एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस एंड अदर फिनोमेना सच एज टेलीपैथी, है ना। रू रिहान की जो बात बाबा कहते हैं वो क्या है? और टेलीपैथी ही है ना। हम कहीं भी बैठे किसी की भी विचार को, भावनाओं को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। इसी तरह तो सतयुगी दुनिया का कारोबार चलना है। इट ऑल्सो एक्सप्लेन्स इमोशनल फंक्शंस एंड कंट्रोल ओवर इमोशंस एंड अदर मैनिफेस्टेशंस ऑफ कॉन्शियसनेस एंड दस हेल्प इन बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन एंड सोशल रिफॉर्म, है ना। जो समाज को बदलना है या परिष्कृत करना है, तो इस कंसेप्शन के आधार पर हम अपने इमोशनल फंक्शंस को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अपने इमोशंस पर मेरा खुद कंट्रोल है, भावनाएं मेरी है और मेरी भावनाओं पर दूसरों का कंट्रोल है। आज की स्थिति यही है ना भाई, भाई आया या बहन आई या पत्नी या पति या माता या पिता या दोस्त, किसी ने आपस में एक दूसरे से ठीक व्यवहार नहीं किया तो दूसरे का मूड खराब, पति ठीक से नहीं व्यवहार कर रहा है तो पत्नी का मूड खराब, माँ ठीक से व्यवहार नहीं कर रही है तो बच्चा दुखी। मतलब मेरी भावनाओं पर कंट्रोल, दूसरे का, तो मेरा जो रिमोट कंट्रोल है वो तो सबके हाथों में दिया हुआ, मैंने जाने कितनों के हाथों में, बॉस के हाथ में, माता के, पिता के, भाई बहन बंधु सबके हाथों में मेरा रिमोट कंट्रोल, तो फिर मैं तो गुलाम हो गई ना, इसलिए पपेट हो गए, सबके गुलाम हो गए, पपेट हो गए, जो जैसा चाहे मुझे वैसा डील कर ले। तो इन सब से फ्री होने का तरीका भी क्या है? सोल कॉन्शियसनेस, है ना। इट ऑल्सो ये इमोशनल फंक्शंस और कंट्रोल ओवर इमोशंस भी इसी के द्वारा हम ला सकते हैं। दूसरे जो मैनिफेस्टेशंस हैं कॉन्शियसनेस के, एंड दस हेल्प इन बिहेवियरल ट्रांसफॉर्मेशन। इतने लोग कितनी संस्थाओं में जाते हैं, बहुत सेवा भी करते हैं, है ना। सेवा भाव कई बार ब्रह्मा कुमारी से भी ज्यादा देखने में आता है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उनके बिहेवियर में वो चेंजेस देखने में नहीं आते। रीजन यही है कि कॉन्शियसनेस की ये जो कंसेप्शन है, ये हमारे बिहेवियर को भी सबकॉन्शियस लेवल तक जाके चेंज करने का तरीका बताती है। डॉक्टर रिचार्ड ने ये बात कही, हीलिंग इज एसेंशियली सेल्फ इनिशिएटेड, है ना, हीलिंग कहीं बाहर से नहीं होती है, सेल्फ इनिशिएटेड है। इट रिक्वायर्स द इंडिविजुअल टू अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द क्वालिटी ऑफ हिज और हर ओन लाइफ। मेरी लाइफ की जो भी क्वालिटी है आज, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल मेरे माता पिता नहीं है, कौन है, हम खुद हैं, है ना। जब तक अज्ञान में थे ये पता नहीं था, तब तक क्या था, है ना, मुझे पढ़ाया नहीं, आपने मुझे पढ़ाने के लिए वहां नहीं भेजा, मुंबई यूनिवर्सिटी से मुझे कराते तो मैं ज्यादा अच्छा करती ना, आपने मुझे यही डाल दिया, छोटी स्कूल में पढ़ा, इस तरह के छोटे छोटे ब्लेम पेरेंट्स पर भी करते हैं ना बच्चे। तो ये तब तक जब तक स्पिरिचुअल नॉलेज नहीं है। तो डॉक्टर रिचार्ड ये कहते हैं कि हर बात के लिए तो हम हैं ही रिस्पॉन्सिबल, पर अपनी सेहत के लिए भी हम खुद ही रिस्पॉन्सिबल हैं। तबियत, द हेल्थ, द हीलर एंड हीलिंग, हु इज द हीलर, माई सेल्फ, मेरा अपना कॉन्शियसनेस ही हील करता है। सबसे पहला तो अंदर में विल होनी चाहिए पेशेंट के टू गेट वेल। ये स्पिरिचुअलिटी में ये बहुत अच्छी बात, हम ब्राह्मणों को ये बहुत अच्छा, क्योंकि जब समर्पण की बात आती है तो बहुत सारे लोग जिनकी थोड़ी उम्र हो गई हो या जॉब में हो, वो इस बात से डरते हैं, कभी बीमार पड़े तो फिर कौन करेगा दीदी, अरे कोई नहीं, या कुछ ऐसे भावना भावना में आ जाते हैं, परमात्मा करेगा, और फिर परमात्मा परमात्मा तो ऐसे बैठ के एक एक की तबीयत ठीक करेगा क्या, वो तो सीधे कहता है भैया जाओ शरीर के डॉक्टर के पास जाओ, अब तो मुश्किल में पड़ गए, हम तो इस भरोसे आ गए थे कि परमात्मा करेगा। वास्तव में हम खुद ही कर सकते हैं, परमात्मा करता नहीं, लेकिन परमात्मा हमें ये सिखा देता है कि तुम कैसे ठीक करोगे खुद को। He is a very good teacher, the supreme teacher, giving supreme education to all of us. तो क्या बताते हैं डॉक्टर रिचार्ड भी कहते हैं, विल होनी चाहिए टू गेट वेल, अंदर से गहराई से। विल पावर अगर कम होती है तो अच्छा होने की, अच्छा ये विल के आधार पर कैसे ठीक होते हैं, इसके लिए प्रूफ क्या है, देखिए जब कोई जल जाते हैं, जले हुए बर्नड पेशेंट्स जो होते हैं, एक वो होते हैं जो सुसाइडल अटेम्प्ट करते हैं, खुद से जलने की कोशिश करते हैं, एक ऐसे पेशेंट होते हैं जो किसी एक्सीडेंट में जल गए हैं। दोनों पेशेंट्स को अगर एक साथ रखा जाए और एक ही तरह की बर्न्स हैं, तो ये देखा गया है एक ही तरह की दवाइयां देने के बाद भी एक ही तरह के बर्न्स को जो सुसाइडल पेशेंट्स हैं उनको क्योर होने में बहुत अधिक टाइम लगता है। तो इसका एक्सप्लेनेशन कैसे देंगे, विल उनकी कम है क्योंकि वो मरना ही चाह रहा है, वो जीना चाहता ही नहीं है। फिर होप होनी चाहिए, अपने प्रति आशा, विश्वास, है ना, फेथ, होप और फेथ, लिसनिंग, डॉक्टर कुछ कह रहा है मैं सुनू ही नहीं, दवा ला के प्लेट में रख दी जैसे बताया और बस, अब या तो दवा खा ली और परहेज नहीं किया, तो पूरी बात सुननी चाहिए, पर्पस पता होना चाहिए अपनी लाइफ का, विल पावर भी तभी बढ़ती है। अगर मुझे ये पता नहीं कि मुझे और जिंदा रह के क्या करना है, कुछ लक्ष्य ही नहीं है जीवन का, तो वो विल पावर कभी बढ़ेगी नहीं। पेशेंट होना चाहिए, शांति वास्तव में सभी गुणों और शक्तियों का निचोड़ है, निचोड़ है। शांत व्यक्ति तभी हो सकता है जब उसने सारे गुण, सारी वैल्यूज, सारी पावर्स, सब कुछ प्रैक्टिस किया हो, तब व्यक्ति शांत हो सकता है। इसलिए आत्मा का स्वधर्म क्या कहा गया, शांति कहा गया, प्रेम नहीं कहा गया। जो फाइनल स्टेज है सोल की, वो शांत स्वरूप है। आत्मा प्रेम स्वरूप भी है, गुण स्वरूप भी है, सब कुछ है, लेकिन उसका स्वधर्म क्या है, शांति। जैसे पानी का स्वधर्म क्या है, शीतलता, कितना भी उबाल लो ठंडा ही होना है। इसी तरह आत्मा को कुछ भी कह दो, क्रोध में आ जाएगी, कुछ कह दी, सब हो जाएगा, लास्ट में थक जाएगी खुद ही शांत। कोई ज्यादा शोर मचाए तो, मचाने तो कितनी देर मचाएगा, क्योंकि स्वधर्म ही शांति है। तो इस शांति को अगर मुझे अपने बल पर एक्वायर करना है तो मुझे क्या करना होगा? देखिए, आप कोई भी एक गुण या वैल्यू लेके चिंतन करके देखिए, कहीं से भी थोड़ा सा भी डिस्टर्बेंस होता है तो सबसे पहले क्या भंग होता है? शांति भंग होती है ना। तो शांत स्वरूप बनना माना सभी वैल्यूज का, गुणों का, शक्तियों का बहुत प्रैक्टिस किया होना चाहिए, जिसको बाबा कहते बहुत काल का अभ्यास। कॉल बाय फर्स्ट नेम, हमारे यहां ऐसे क्यों बोलते हैं, है ना, शैला बहन, किरण बहन, है ना, संगीता बहन, भानु भाई, है ना, अभी अभी आए, वेलकम टू द क्लास, है ना। तो ऐसे क्यों बोलते हैं भाई, पूरा नाम लेके नहीं बोलते? फर्स्ट नेम से, वेन एवर यू कॉल समवन बाय द फर्स्ट नेम, इट गिव्स अ वॉर्म्थ इन रिलेशनशिप। बहुत अच्छा लगता है ना, फैमिली का एहसास होता है। आज जो बाबा कह रहे थे कि तुम हो ईश्वरीय औलाद, ये अंदर से फील में आए मुझे कि सच में एक मेरा बाप और इतने सारे उसके बच्चे और ये सब मेरे भाई बहन, तो कितनी अच्छी फीलिंग आएगी। कभी आपको डर, टेंशन, असुरक्षा, नेगेटिव फीलिंग आ सकती, आती है क्या कभी मधुबन में? आती है, आती है। और ट्रेन में भी जब आप पार्टी में आते हैं कहीं पे, आती है। लेकिन एक आम व्यक्ति जब जर्नी पर निकलता है कितना सोचता है वो, ये हो ऐसा हो। हमें मालूम है कि ट्रेन पर दीदी को छोड़ने गए और मैं अगर चढ़ जाऊं तो भी मेरी सारी व्यवस्था होनी। क्यों ये फीलिंग है? ये वॉर्म्थ है, वो फैमिली का जो टच है। बाबा ने आके पारिवारिक संस्कृति सिखाई, तो एक विश्व, वन गॉड, वन वर्ल्ड, वन फैमिली इज ओनली पॉसिबल थ्रू दिस कंसेप्शन ऑफ राजयोग। ये हम बड़े हक से सिखा सकते हैं किसी को भी। हम इस नॉलेज को लेके ऐसा बन के निकले, व्हेन आई गेट आउट ऑफ द डोर स्टेप एंड आई एंटर सम अनादर डोर स्टेप ऑफ सम यूनिवर्सिटी, कॉलेज और अ हॉल, तो मेरे एंटर करने मात्र से ही वहां का माहौल बन जाए। जिसको दादी कहती है इतना अंदर से जिगरी मेरा बाबा हो जाए तो ये सब फिर मेरे हैं, वन वर्ल्ड, वन गॉड, वन फैमिली, ज्यादा तकलीफ नहीं है फिर। डिवाइन टच, टच थेरेपी हम जानते हैं, बड़ी से बड़ी बीमारियों को टच थेरेपी से ठीक किया जाता है। रेकी वाली और क्या करते हैं, ये करते हैं ना। तो डिवाइन टच, लेकिन ये डिवाइन टच मैं तब दे सकती हूँ जब मैंने डिविनिटी को अपने अंदर इम्बाइब कर लिया है ना। और बहुत अच्छा लविंग सपोर्ट अगर हो हॉस्पिटल में, है ना, और जो लोग आ रहे हैं उनको बहुत अच्छी तरह से ट्रीटमेंट मिले, तो वो भी हीलिंग को बहुत फास्ट बनाता है। पेंटिंग अ पिक्चर ऑफ हेल्थ। अच्छा, बाबा ने आगे हमको क्या कहा? सबसे पहले एक दो साल पहले पांच स्वरूपों का अभ्यास करो। कोई भी पिक्चर जो हम पेंट कर लेंगे, उस पिक्चर को मैं पा लूंगी किस बेस पर? इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन आप कैसे देंगे? आई कैन बिकम व्हाट आई थिंक। इनफैक्ट व्हाट डू यू से? यू आर व्हाट यू थिंक, यू आर नॉट व्हाट यू वेयर। मैंने क्या साड़ी पहनी, क्या शॉल पहना, क्या ड्रेस पहना, क्या टाई लगाया, क्या शूज पहना, ये मैं नहीं हूं, लेकिन मैं वो हूं जो मैं सोचती हूं। दैट बिल्ड्स माई इनर पर्सनैलिटी। नाउ व्हाट आई थिंक आई एम दैट, ये पॉसिबल है क्या? मैंने सोच लिया मैं आज क्वीन विक्टोरिया हूं तो बन जाऊंगी क्या? लेकिन कभी ना कभी बन सकती हूं, ये राज किसी को मालूम नहीं। लेकिन मेरा विजन इतना क्लियर होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को इतना क्लियर था मैं कृष्ण बनूंगा, विजन क्लियर था। विजन क्लियर होने से क्या होता है, क्यों हर चीज को हम मेडिटेशन में भी हम क्यों कहते हैं यू हैव टू विजुअलाइज? हम ये नहीं कहते इमेजिन कीजिए, हम क्या कहते हैं? विजुअलाइज कीजिए। जैसे जैसे हम पिक्चर्स को विजुअलाइज करते जाते हैं, दोज पिक्चर गेट एंटर इनटू सबकॉन्शियस। आपका जो सबकॉन्शियस माइंड है, ये बड़ा ही जबरदस्त टूल है हमारे पास। कैसे टूल है? सबकॉन्शियस में जो पिक्चर फीड हो जाती है, और जो हमारी मेमोरी है वो शब्दों को नहीं समझती, पिक्चर्स को समझती है। मैंने कहा घड़ी, तो आप मेरी बात कब समझेंगे? जब आपके आंखों के सामने घड़ी आई। लेकिन अगर आपकी आंखों के सामने घड़ी, आपने पहले कभी देखी ही नहीं है कि घड़ी क्या होती है, कोई ऐसे व्यक्ति है बिल्कुल आदिवासी एरिया से है तो उसको मैं घड़ी घड़ी कहती रहूं, वो समझेगा ही नहीं। तो ये सबकॉन्शियस के स्टॉक में होनी चाहिए ना ये चीज, तब मैं समझूंगी घड़ी क्या है। सिमिलरली अगर बाबा ने ये कहा है या अगर ये मेरा लक्ष्य है कि मुझे हेल्दी बनना है या मुझे ऐसा बनना है, मनुष्य से देवता बनना है या सतयुग में आना है या कृष्ण के अंग संग रहना है, जो कुछ भी मेरा एम है, तो उसका एक पिक्चर पेंट होके मेरे सबकॉन्शियस में फीड हो जाना चाहिए। तो मेरे सबकॉन्शियस में ये ताकत है कि वो उस काम के होने के लिए परिस्थितियां निर्मित कर लेगा, लेकिन इसमें टाइम लगता है। इसीलिए बाबा कहते हैं एक पूरा जन अभ्यास करो रोज। अच्छा, दूसरी वंडरफुल बात क्या है सबकॉन्शियस के साथ, इसके अंदर कुछ इनपुट डालना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये जागता नहीं है, सोया रहता है। सोल कॉन्शियसनेस हो या बॉडी कॉन्शियसनेस हो, सबकॉन्शियस डजंट वर्क ऑल द टाइम 24 आवर्स, वर्क नहीं करता। ये कब वर्क करता है, जब हम अर्ध निद्रावस्था में होते हैं तब ये सबकॉन्शियस वर्क करता है। और वो समय क्या है, अमृत वेला है ना, थोड़ा एकदम उठते। इसलिए बाबा क्या कहता है, फर्स्ट थॉट, पहला थॉट इज इंपॉर्टेंट। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस समय आपका सबकॉन्शियस कुछ फीड करने की स्थिति में होता है। इसी तरह बाबा क्या कहते, बच्चे रात को जो कुछ हुआ वो सब बिल्कुल बाबा को पोता मिल दे के सो जाओ, और तुम रात को सोने से पहले मुझे अपनी सब चीजें दे दो, गलतियां भी बता दो, और तुम जागेंगे इससे पहले मैं तुमको माफ कर दूंगा। क्यों, क्योंकि ये ही दो वक्त हैं जब सबकॉन्शियस में कुछ फीड किया जा सकता है। तो अगर सोते वक्त बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स हमने फीड कर ली, अच्छी चीजें बाबा के पास बैठ के, और मॉर्निंग टाइम फिर उनको रिवाइज किया, ऐसे करते 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 कुछ समय की प्रैक्टिस में वो पिक्चर फीड हो जाएगा। और एक बार वो पिक्चर फीड हो गया तो वो उस काम के सफल होने के लिए वैसी परिस्थितियां बना लेगा। इसलिए कहा जाता है कभी निगेटिव मत सोचिए, अगर मैंने निगेटिव सोचना प्रारंभ किया तो वो निगेटिव चीजें भी फीड हो जाएंगी, और फिर अप एंड डाउन चलता रहेगा पुरुषार्थ में। स्पिरिचुअल व्यक्ति को हमेशा ही पॉजिटिव होना चाहिए, दिस इज द रीजन। होना चाहिए, पर क्यों होना चाहिए, ये है, बड़ा जबरदस्त जिन्न है अंदर बैठा हुआ। वो नहीं शब्द तो समझता ही नहीं ना, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, मैं लेट ना हो जाऊं, तो लेट हो जाएंगे, क्योंकि उसको हां या ना समझ नहीं आता है। उसको क्या समझ आता है, लेट। वो लेट फीड हो गया, फीड हो गया तो आपको हर ट्रैफिक सिग्नल पर रुकना पड़ेगा। इज दैट क्लियर। हाँ, ये बाबा कहते हैं मुरली में चित्र चरित्र को निर्मित करता है, लेकिन इस चित्र की क्या इंपॉर्टेंस है। जब हम ऐसे जाके किसी यूनिवर्सिटी में लोगों को कहें या स्टूडेंट्स को समझाएं, हमारे सामने बैठे हैं एमबीए के स्टूडेंट्स, हमारे सामने बैठे हैं बड़े बड़े डिग्री कॉलेज के स्टूडेंट्स, उनको हम कहें साइंस के स्टूडेंट्स हैं या आर्ट्स के हैं या कॉमर्स के हैं, चित्र चरित्र को निर्मित करता है, अगर इस भाषा में हम समझाएं तो वो उनको पूरी रीजनिंग देनी पड़ेगी, बिकॉज टूडेज स्टूडेंट्स एंड टूडेज इंटेलेक्चुअल्स दे वॉन्ट जस्टिफिकेशन फॉर एवरीथिंग। सो इफ वी जस्टिफाई एंड गिव देम द थिंग्स दे विल एक्सेप्ट, अदरवाइज दे विल नॉट। नाउ विल टू गेट वेल डिपेंड्स अपॉन फॉलोइंग फैक्टर्स। दूसरी केस ये भी है, कई बार डॉक्टरों ने देखा कि एक ही तरह के दो पेशेंट है, एक जैसी बीमारी और उनको एक जैसी दवा दी, फिर भी दोनों के जो रिजल्ट्स है वो बहुत डिफर कर रहे हैं। क्यों, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ये एक्सप्लेनेशन में उन्होंने ये चार पॉइंट्स आपकी बुक में दिए। डॉक्टर्स कॉन्फिडेंस, डॉक्टर के कॉन्फिडेंस पर भी डिपेंड करता है। वर्बल एंड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन डॉक्टर का कैसा है, वर्बल कम्युनिकेशन तो जो शब्द हम बोलते हैं, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन क्या है, बॉडी लैंग्वेज है, नैनो की भाषा है, बहुत कुछ है, है ना, आए तो मुस्कुराया किस तरह से, ये सारा नॉन वर्बल में आ जाता है। एम्पैथी विद पेशेंट्स, कितना वो उस पेशेंट के साथ किस तरह से उसको ट्रीट कर रहा है एम्पैथेटिकली। एम्पैथी मतलब एक है सहानुभूति, दूसरी है समानुभूति। एम्पैथेटिकल ट्रीटमेंट्स मीन कीपिंग वंस ओन लेग्स इन अदर शूज। समानुभूति मतलब अपने आप को उसको अपने समान समझकर उसके साथ ट्रीटमेंट करना, इसको कहते हैं समानुभूति। और एक है सहानुभूति, जहां हम समझते हैं कि इसको सहायता की जरूरत है तो हम उसके प्रति थोड़ा सिंपैथी दिखाते हैं। पेशेंट्स फेथ इन अ डॉक्टर, दैट इज ऑल्सो वन फैक्टर। पेशेंट का जितना विश्वास होगा डॉक्टर में, वो उस ट्रीटमेंट को उतनी जल्दी फायदा ले सकता है। स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए क्या फैक्टर्स हैं? अब ये सब तो बाबा के बच्चों को मालूम है और कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा साइंटिफिकली हमको खुद को भी करना और लोगों को भी समझाना। स्टार्ट योर डे विद पॉजिटिव एटीट्यूड। सबसे अच्छा पॉजिटिव एटीट्यूड क्या है? बाबा गुड मॉर्निंग, हमको तो पता है, लेकिन अब उनको कैसे समझाएंगे? तो पहला संकल्प अपने लिए बहुत अच्छा हो, क्योंकि ये फीड होगा आपके सबकॉन्शियस में, और ये आपके स्टॉक में जब ऐसी पॉजिटिव चीजें फीड हो जाएंगी। देवी देवता क्या थे? वो बहुत वाइज और बहुत ही पॉजिटिव लोग थे, है ना। देवी देवता मतलब नेगेटिव थिंकिंग वाले लोग नहीं। अच्छा, पॉजिटिव थिंकिंग का ये भी मतलब नहीं कि कुछ भी आता जाए वो यस 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 मैं कहती जाऊंगी, क्योंकि मैं तो पॉजिटिव हूं ना, ये स्पिरिचुअल नहीं है। स्पिरिचुअल होना मतलब ऐसा नहीं। क्रिएट लाइट एटमोस्फियर थ्रू योर पॉजिटिव थॉट्स वर्ड्स एंड डीड्स, है ना। बहुत मतलब एटमोस्फियर को लाइट रखने की कला आनी चाहिए, लेकिन एटमोस्फियर को लाइट रखने में हम हल्के ना हो जाएं, जिसको बाबा कहते हैं हंसी मजाक भी ऐसा नहीं होना चाहिए जो हल्कापन लिए हुए, है ना। विनोद अच्छी बात है, खिल्ली उड़ाना, व्यंग करना, है ना, टॉन्टिंग, कमेंटिंग, दिस इज रॉन्ग। रिस्पेक्ट लाइफ ऑफ एवरीवन विदाउट प्रेजुडाइसेस एंड डिस्क्रिमिनेशन। मेरी लाइफ की जो वैल्यू है, वास्तव में ये जीवन ईश्वर का दिया हुआ उपहार है ना। ब्राह्मण जीवन तो बिल्कुल ही प्रसाद है, वी आर द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड, शास्त्रों में हमारा ऐसे वर्णन है। ये भी कितना बड़ा स्वमान है कि हम परमात्मा की, भगवान की प्रथम रचना है। सोच के देखिए, जब इस धरा पर भगवान आया और उसको नए सिरे से ये दुनिया बनानी थी, तो उसने सबसे पहले जिनको बनाया वो हम हैं। कितनी अच्छी बात है, वी आर द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। तो मेरी लाइफ कितनी रिस्पेक्टफुल और कितनी, भगवान ने खुद अपने हाथों से बैठ के रचा है, हमको रच रहा है हर रोज सवेरे, अमृत वेले, दिन भर। कितनी खुशी और कितना अंदर से अपने लिए रिगार्ड और रिस्पेक्ट, दिस इज कॉल्ड सेल्फ रिस्पेक्ट। तो अपनी लाइफ को मैं जैसे रिस्पेक्ट करती हूँ, ऐसे ये जो मेरे सामने बैठे हैं, पढ़ाती भी किनको हूँ ना। माउंट आबू में पढ़ाना, पीसीपी तो हर जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पढ़ाना क्यों बहुत अच्छी चीज है? क्योंकि हम देवी देवताओं को पढ़ाने जा रहे हैं भाई, किसी ऐसे वैसे को नहीं पढ़ा रहे। तो कितना अच्छा, बहुत अच्छा स्वमान, बहुत अच्छी खुशी। लिसन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड द वैरायटी ऑफ व्यूज, ओपिनियंस एंड अवॉइड फैंटेसिज्म एंड इंसल्ट्स। ऐसे सब माहौल बनता है कभी कभी ग्रुप्स में, लेकिन ऐसी चीजों को हमको क्या करना है? अवॉइड करना है, बिकॉज इफ आई वॉन्ट टू बी पॉजिटिव आई हैव टू अवॉइड नेगेटिव थिंग्स। यही है ना, अगर मुझे रोशनी चाहिए तो वहां अंधेरे को मैं ना आने दूं, इसके लिए क्या करना होगा? एक मोमबत्ती जलाए रखूं। तो हमेशा ये मोमबत्ती जलती रहनी चाहिए पॉजिटिविटी की। एवरीडे प्रैक्टिस एटलीस्ट 15 मिनट्स ऑफ इनर साइलेंस फॉर स्पिरिचुअल एंड मॉरल डेवलपमेंट। ये तो हम करते ही हैं, लेकिन आम लोगों को भी ये बताना है। इनर साइलेंस के लिए पहले तो उनको आउटर, ऐसी शांत क्लास आपको कहीं पर मिलेगी थोड़ी, ऐसा पीस की अनुभूति। वहां लोगों की कर्मेंद्रियों में इतनी हलचल होती है, इतनी हलचल होती है, स्टूडेंट्स को क्लास में बिठाने में 10 मिनट लग जाता है और जाने से पहले ही बैग देखने लगते हैं वो, इवन इन हायर क्लासेस, है ना। तो ये सब हमको मिलेगा नहीं, वहां क्रिएट करना पड़ता है। Use the original qualities of the soul such as love, tolerance, mercy and kindness in your daily life. दादी बड़ा अच्छा बोलती, जानकी दादी, मुझे हमेशा याद रहता। रोज सवेरे उठ के जैसे ब्लड प्रेशर की गोली लेते हैं ना लोग, ऐसे तीन गोलियां ले लो, हाँ लव, हाँ पेशेंस, पीस और लव। तो ये पेशेंस रखने के लिए टॉलरेंस भी रखनी पड़ेगी ना। अगर मुझे धैर्यता पूर्वक व्यवहार करना है तो सहनशील होना ही पड़ेगा, लेकिन ये सहनशीलता आती किससे है? स्वयं के प्रति प्रेम से। टॉलरेंट होना लोग चाहते हैं लेकिन क्यों नहीं हो पाते? क्योंकि खुद का खुद से प्यार नहीं होता है। अगर मेरा खुद से प्यार है, मैं बहुत लवफुली खुद को ट्रीट करूं, बहुत प्यार से अपने से बात करूं, तो मैं टॉलरेंट हो जाऊंगी ऑटोमेटिकली। करके देखिए, एक्सेप्ट लाइफ विद जॉय। जो मुझे मिला है वो बहुत ही खूबसूरत है, कितना सुंदर है। लोगों को ये इमेजिन करना शायद मुश्किल होगा, लेकिन हमें तो ये मुश्किल नहीं है। हमें दुनिया की सबसे अनुपम सौगात मिली हुई है, संगम जैसा समय फिर शायद कभी आएगा ही नहीं, है ना। तो व्हाट वी शुड डू, स्माइल स्माइल एंड वंस मोर स्माइल। पर्सनल इफेक्टिवनेस आती है कैसे? आती है इन चार पॉइंट्स में आप चेक कर सकते हैं। स्पिरिचुअलिटी को हम जैसे जैसे अपनी लाइफ में लेते जाते हैं, कैसे कैसे हमको फर्क देखने मिलता है। कंसंट्रेशन इंक्रीज होता है, होता है? कोई ऐसा है जो कहे नहीं हुआ है? होता है। हमारी सीखने की एबिलिटी बढ़ जाती, क्यों? क्योंकि जब कंसंट्रेशन बढ़ा है तो नेचुरली मैं, एकाग्रता बढ़ी है तो मैं शांत भी रहूंगी और मैं बहुत इफेक्टिवली सुनूंगी तो सीखूंगी भी। और एबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल, अपने आप ही पता चल गया कि जो कुछ है वो सब मेरे ही कर्मों का फल है, आगे भी जो मिलना है, जो मैं करूंगी वही मुझे मिलना है। ऐसे नहीं है कि भाई मेरे साथ रहने वाली बहन बहुत पुरुषार्थ कर रही है और मैं उस बहन के लिए सब कुछ कर रही हूं तो मुझे कुछ शेयर मिल जाएगा, ऐसा तो नहीं है, है ना। माँ उपवास करे तो बच्चे को फल मिले, ऐसा नहीं है। मुझे पता है मैं जो कुछ कहती हूँ करती हूँ वो सब मुझे ही मिलना है। तो आई हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल फॉर माई थॉट्स, एक्शंस एज वेल एज वट एवर आई हैव ऑलरेडी डन। पास्ट में भी जो किया है, जो मुझे मिला है, इसके लिए मैं किसी को ब्लेम नहीं करूंगी। कहाँ पे होता है? वो स्पिरिचुअल लोग नहीं है, दे आर नॉट स्पिरिचुअल पीपल। हाँ, दे आर नॉट स्पिरिचुअल पीपल सिस्टर, दे आर रिलीजियस पीपल। देर इज अ लॉट ऑफ अ ग्रेट डिफरेंस इन बिटवीन स्पिरिचुअल पर्सन एंड अ रिलीजियस पर्सन। धार्मिक व्यक्ति में और आध्यात्मिक व्यक्ति में फर्क है। हम यहाँ ये डिस्कस कर रहे हैं कि आध्यात्मिकता से क्या इफेक्टिवनेस आती है। हम धार्मिक व्यक्तियों के बारे में यहाँ नहीं सोच रहे। हमारा लेसन क्या है? स्पिरिचुअलिटी इनटू एक्शन। तो जब मैं स्पिरिचुअल हो जाती हूँ तब मैं ये समझ जाती हूँ। जब तक मैं स्पिरिचुअल नहीं हूं तब तक तो जो कुछ प्रचलित है वो सब कुछ होता है और होता रहा है, होता रहेगा। और सेल्फ रिस्पेक्ट भी बहुत इंक्रीज होती है ना। हम ऐसा सेल्फ रिस्पेक्ट में कभी रह सकते थे? आई एम द फर्स्ट क्रिएशन ऑफ गॉड। हम ऐसे रिस्पेक्ट में कभी रह सकते थे? इतने बड़े परिवार की मैं मेंबर हूं, मैं दुनिया की किसी भी शहर में कदम रखूं, मुझे रिसीव करने एक भाई तो आ ही जाएगा, मुझे पता है। इतना विश्वास किसी को रहता है? और अगर कोई भी नहीं आएगा तो मैं ये सफेद साड़ी पहन के और बाबा का बैच है साथ में तो ओम शांति कह के कोई ना कोई मदद करने वाला बंदा तो कितना बड़ा सम्मान। कभी कभी किसी बात की चिंता फिक्र, नो क्वेश्चन। ये अंदर जाके पूछेंगे लेकिन फिर भी लेटर नहीं होगा तो आप कहते हैं दीदी मोबाइल से बात करा दूं, कॉन्फिडेंस है ना। ये तो करना पड़ेगा ना, क्योंकि नेगेटिव वर्ल्ड में रह रहे हैं तो कुछ नेगेटिव लोगों के कारण थोड़ी प्रिकॉशंस। अच्छा, ये फ्लो चार्ट शो कर रहा है, इट शोज योर सिनेरियो, टूडेज सिनेरियो। अभी का जो सिनेरियो है वो कैसा है? अभी क्या है? ईगो है। ईगो क्या है? सीखने नहीं देता व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि मुझे तो सभी कुछ आता है ना, तुम क्या सिखाएंगे मुझको? मैं तो पहले से ब्रह्मा कुमारीज में जाता हूँ, वहां आप कहीं जाएंगे तो वहां मिल जाएगा कोई ना कोई ऐसा। तो इट इट इज अ ग्रेट लॉस. क्यों? बिकॉज आपकी एबिलिटी जो सीखने की और कॉन्सेंट्रेट करने की वो खत्म हो जाती है ईगो से. इट इंटरफियर्स विद आर एबिलिटी टू बी रिस्पॉन्सिबल. ये हमको रिस्पॉन्सिबल भी नहीं बनने देता है. और फिर जब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की एबिलिटी खत्म हो गई तो एफिशिएंसी नेचुरली रहेगी नहीं, क्योंकि मैं किसी भी काम को रिस्पॉन्सिबिलिटी से करूंगी नहीं. और जब मेरी एफिशिएंसी कम होगी तो नेचुरली लोगों में मुझे वो सम्मान, प्यार, सहयोग मिलेगा नहीं. वो नहीं मिलेगा तो फिर क्या होगा? फ्रस्ट्रेशन होगी. तो फ्रस्ट्रेशन डिप्रेशन का एक ये भी कारण है. प्रोफेशनल डेवलपमेंट और लीडरशिप पोटेंशियल में कैसे अंतर आता है? देखिए, जैसे हम एनर्जीज, जो पॉजिटिव एनर्जीज है, उनको एक्सपीरियंस करते हैं, चाहे वो पेशेंस है, चाहे दूरदर्शिता है, शांति है, या लचीलापन जो जीवन में हमारे होता है ना, हम ऐसे लॉ पर स्टिक नहीं किए रहते हैं. ब्रह्मा बाबा ने एक ऐसा लॉ नहीं बनाया, किसी को बोला तुम शादी कर लो, किसी को बोला तुम नहीं करो, किसी को बोला तुम जॉब कर लो, किसी को बोला तुम नहीं करो. तो फ्लेक्सिबल है स्पिरिचुअल व्यक्ति, ऐसे लकीर का फकीर नहीं होता. वो परिस्थितियों के आधार पर, समझ के आधार पर जज करके और फिर डिसीजंस देता है. तो ये दूरदर्शिता और ये फ्लेक्सिबिलिटी जो है, ये हमको एक बहुत अच्छा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस हमारी पर्सनालिटी पर डालती है, और वो इन्फ्लुएंस हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर में दिखाई देता है. जब हम कुछ कार्य करते हैं, बात करते हैं, तो आसपास एक बहुत अच्छा लविंग एटमॉस्फेयर क्रिएट कर लेते हैं, और इसके कारण हमें लोगों से भी बहुत प्यार और सम्मान मिलता है. एक स्पिरिचुअल व्यक्ति, जो अच्छा स्पिरिचुअल व्यक्ति होता है, वो ऑटोमेटिकली लीडर होता है. उसको लीडर बनना या बनाना नहीं पड़ता, वो बन जाता है. क्यों? बाबा कहता स्वराज्य अधिकारी सो विश्व राज्य अधिकारी. ऑटोमेटिक ही बनेगा. कैसे? जो गुड लीडर होता है उसमें क्या होता है, ही लीड्स थ्रू हिज ओन एग्जाम्पल. वो खुद करके सिखाता है लोगों को. यही था ना ब्रह्मा बाबा में, यही था ना. एडम कहते हैं ना इंग्लिश में, आदम, एडम, और एडम से बना एडमिनिस्ट्रेशन. तो गॉड ने एडम को सिखाया, और एडम ने जो कर्म किए वो इतने फर्स्ट क्लास थे कि इस दुनिया को चलाने के लिए लोगों ने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वही रूल्स अपनाने की कोशिश की, अडॉप्ट करने की कोशिश की. पर क्योंकि गॉड ने जो बेसिक्स सिखाए थे वो उनको नहीं मालूम थे, दे आर नॉट एबल टू अडॉप्ट द थिंग्स. जब एडमिनिस्ट्रेटर्स की हम क्लासेस कराते हैं तो ये चीजें डिस्कस करते हैं उनके साथ. ये बहुत अच्छी चीजें हैं अगर हम इम्बाइब कर सकें लाइफ में. दे आर वंडरफुल, दे विल मेक यू अ वंडरफुल पर्सनैलिटी. फिर हमें कुछ पढ़ाना ही नहीं पड़ेगा, सब कुछ लोग हमारे चाल चलन से ही पढ़ लेंगे. स्पिरिचुअलिटी पुट्स अस बैक विद आर इनर रिसोर्सेज, दस गेनिंग अ हायर स्टेटस. हमारी आंतरिक जितनी शक्तियां हैं वो एक्टिवेट हो जाती हैं, और उन इनर रिसोर्सेज को यूज कर लेते हैं हम, और इससे हमारा अपना स्टेटस ऑटोमेटिकली बढ़ता है. कोई भी ऐसा नहीं होगा जिसको ये फील हुआ हो. कई बार स्पिरिचुअलिटी को हम गलत ढंग से लेते हैं, और गलत ढंग से लेने के कारण जिसको बाबा कहता है बैलेंस बनाना, और वो सब नहीं कर पाते हैं. और फिर है ना, हमारी ब्राह्मणों की भाषा में हम क्या कहते हैं, वो ये ठीक से काम नहीं कर रहा, ठीक से जॉब नहीं कर रहा, या फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी ठीक नहीं उठा रहा, तो डिससर्विस हो गई. वो डिससर्विस क्यों होती है? जैसे योग करने वाले लोग अगर प्रॉपर गुरु की बात को नहीं समझ के अपने ढंग से उल्टा सीधा योग कर लेते हैं तो स्वस्थ होने के बजाय बीमार पड़ जाते हैं. ठीक इसी तरह ज्ञान गंगा जब स्वर्ग से धरा पर आनी थी तो गंगा ने क्या कहा, अगर मैं डायरेक्ट आ जाऊं तो तबाही मचेगी, इसलिए मुझे धारण करने वाला ऐसा हो जिसकी इतनी तपस्या हो. तो वो धारण करने वाला शंकर की जटाएं, वो शंकर जिसने शिव की तपस्या की है. कौन? गृहस्थी वाला, सन्यासी नहीं है, भभूत लगाया है पर गृहस्थी है. इधर चांद है. ये जटाएं आपकी 63 जन्मों की तपस्या का प्रतीक है, और आप ही वो हैं जो जिसमें ये शक्ति है, जो इस ज्ञान को अपनी जटा रूपी बुद्धि में धारण करके फिर धरा पर बहा सकते हैं. अगर ये डायरेक्ट आवे तो तो लोग समझ ही नहीं पाएंगे अप्लाई कैसे करना है, और फिर क्या होगा, तबाही ही होगी ना। अगर डायरेक्ट रेडियो पर बाबा सुनवा देता शुरू से, बीबीसी तो चल रहा था इतने सालों से, क्यों नहीं सुनाया बाबा ने। इतने ढेर सारे गृहस्थी एग्जाम्पल्स निकाले, इतने ढेर सारे ऐसे लोग निकाले, ब्रह्मा कुमारियां भी जो बनी तो उनको ये नहीं कि फ्री बैठे हो, एक घर छोड़ के हजारों घरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने का बेहद की गृहस्थी दी बाबा ने। तो हमको देख के अब वो फॉलो कर सकते हैं, वरना उन आत्माओं में इतनी शक्ति नहीं है कि इस ज्ञान को हम कैसे इम्बाइब करें वो समझ पाएंगे। यही है जो गंगा ने कहा कि मैं डायरेक्ट धरा पर नहीं आ सकती। तो ये प्रोफेशनल डेवलपमेंट भी होती है, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट से बाकी सारी डेवलपमेंट्स ऑटोमेटिक हो जाती है, और फिर जो काम हम करते हैं उस काम में बड़ी अच्छी क्वालिटी होती है। क्योंकि एक जो इंटेलेक्चुअल व्यक्ति बाहर की दुनिया का है वो केवल दिमाग से काम करता है, हम दिल भी दिमाग भी और अपने बहुत सुंदर बाबा के दिए हुए संस्कार भी सबका उपयोग करके कार्य करते हैं, तो उस कार्य इट्स मेनी फोल्ड्स, बहुत अच्छा रिजल्ट उससे मिलती है। अब अगर मुझे स्पिरिचुअलिटी अपने एक्शन में ले आनी है तो व्हाट शुड आई डू देन, आई शुड प्रैक्टिस सोल कॉन्शियसनेस फर्स्ट एंड देन गॉड कॉन्शियसनेस, आत्म अभिमानी और परमात्म अभिमानी। और जब मैं ये प्रैक्टिस करूंगी तो क्या मिलेगा, पीस। इसीलिए हमने कहा ना, सभी गुणों और सभी शक्तियों की का निचोड़ है शांति, पीस द लास्ट थिंग टू बी अटेंड, टू रिमेन पीसफुल। थैंक यू, ओम शांति। एनी क्वेश्चंस, कुछ पूछना है किसी को? चलिए ठीक है, बहुत अच्छे से बहुत पेशेंटली आप लोगों ने सुना, और कहीं इतनी अच्छी पेशेंट क्लास नहीं होती, एनर्जी इतनी पॉजिटिव एनर्जी का सहयोग मिलता नहीं है, इस सहयोग के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, ओम शांति।
ओम शांति। वैसे तो जैसे इन्होंने कहा, इतनी पीसफुल क्लास कहाँ होगी, इतना अच्छा टीचर कहाँ होगा, ताली भी नहीं बजाई आपने तो। आदरणीय ब्रह्मा कुमारी किरण बहन ने जिस ढंग से स्पिरिचुअलिटी इन रियल लाइफ सिचुएशन इन एक्शन कराया, उसमें आपने देखा किस फ्लो से, किस कॉन्फिडेंस से, और कितना अच्छा कंटेंट और कितनी अच्छी एक्सप्लेनेशन से समझाया कि आपको अब पुस्तक देखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ घर में बैठे आप विजुलाइज कर लें कि आप किरण बहन की क्लास में बैठे हैं तो सब कुछ याद आ जाएगा उन्होंने क्या क्या बताया। थैंक यू बहन जी, बहुत ज्यादा शुक्रिया आपका।